जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe. Jai Gaura Nitai Jai Gaura Nitai Gaura Nitai Jai Gaura Nitai. Jai Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
Sabha Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ananta Koti Vaishnava Vrinda Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maya Ki Jai. Shri Shiva Digambareshwar Mahadev Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Samavet Maha Samavet Bhakta Vrinda Ki Jai. Samavet Bhakta Vrinda Ki Jai. Samavet Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिनी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्य भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा यहाँ मुनोली में शिव दिगंबरेश्वर मंदिर में हम यहाँ पधारे हैं परम भक्त शिव जी के छत्र छाया में उनके चरण कमलों के आश्रम में उनके ही आराध्य देव का गुणगान करने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। हालांकि थोड़ी गर्मी है फिर भी वृक्ष नारियल के अनेक हैं और अच्छा मंदिर भी है यहाँ, साथ साथ में हरि नाम और हरि कथा की शीतल छाया से जो भी गर्मी है उसका अनुभव नहीं होना है। तो आप सब सुबह सुबह से अपने घरों से निकले हैं यहाँ आने के लिए और कल दोपहर तक यहाँ रहने का कार्यक्रम है। तो जैसे कि हर यात्रा में होता है वैसे ही हमें इस यात्रा में भी ऐसे आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखना है। बेलगाम की बातें और संसार की बातें नहीं करनी है। जब हम यहाँ पर भगवान की कीर्तन और कथा करने के लिए आए हैं, भक्तों का संग करने के लिए आए हैं, तो भगवान के सिवाय और कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, न कोई अन्य विचार भी होना चाहिए। समय समय पर जब हम ऐसे करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे चेतना के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। इसीलिए थोड़ी बहुत जो प्राकृतिक असुविधाएं हो भी, गर्मी हो या कुछ हो, उसकी ज़्यादा चिंता न करके हमें हरि कीर्तन हरि कथा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। भगवान हमें समय समय पर अवसर देते हैं ये भूल जाने के लिए, उस भावना को भूल जाने के लिए जो हमारे अनेक जन्मों से साथ में है, और वो है शारीरिक भावना। हम तो सुनते आए हैं कि हम वास्तव में शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन आत्मा का अनुभव करने के लिए भी शरीर शारीरिक भावना से मुक्त होना भी आवश्यक है। इसलिए थोड़ी बहुत तपस्या की आवश्यकता भी होती है, जिससे कि हम देहात्म बुद्धि से थोड़ा बहुत परे हो जाएं और थोड़ा बहुत शरीर को कष्ट दिए बिना आत्मा की पहचान कैसे हो सकती है। इसलिए थोड़ा बहुत कष्ट, थोड़ी बहुत तपस्या, ये हमारे भक्ति जीवन के लिए भी बहुत लाभदायक है, बहुत अनुकूल है। इसलिए हर बार जब हम ऐसे कोई यात्रा में निकलते हैं तो इस भावना को हमें बनाए रखना है, बल्कि केवल यात्रा के समय नहीं, हर दिन इस भावना को हमें बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि जब भी हम हर दिन घर से मंदिर आते हैं तो ये भी यात्रा ही है। भले हम हर दिन न आ पाएं, जब भी आ पाएं, हर दिन यात्रा है। तो इसी भावना को हर दिन बनाए रखना है। अब यहाँ हमारे शहर से या घर से आश्रम से दूर आने का उद्देश्य यही है कि हम एक अलग से वातावरण में आएं और वहाँ केवल हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम कार्यरत रहें। अपने अपने स्थानों में रहते हैं तो अनेक चीज़ें रहती हैं जो हमारे ध्यान को भंग करती हैं, हमारे मन को विचलित करती हैं, परंतु यहाँ आके हमें और कोई विचार नहीं करना है। बस एक एकाग्र चित्त से कम इन डेढ़ दिनों के लिए हमारा ध्यान भगवान की ओर केंद्रित करना है। हमने सोचा आज श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध से कुछ पढ़ा जाए, कुछ सुना जाए या सुनाया जाए, जिसमें बहुत अनुसरणीय उपदेश सुखदेव महाराज महाराज परीक्षित को देते हैं। जैसे कि आपको पता है, परीक्षित महाराज की मृत्यु होनी थी 7 दिनों में, और वो गंगा के तट पे चले आए थे भागवत का श्रवण करने के लिए। अनेक ऋषि वहां एकत्र हुए थे, परंतु वो सही ढंग से परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। अंततः जब सुखदेव गोस्वामी वहां पर आए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया और परीक्षित महाराज संतुष्ट हुए। वैसे कल एक जगह सत्संग में कोई पूछ रहे थे कि क्या भक्ति करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी मृत्यु कब आएगी। नहीं, शायद नहीं पता चले कि मृत्यु कब आएगी, परंतु ये बात तो हमेशा हम सदैव निश्चित ध्यान में रहेगी कि मृत्यु आएगी, कम से कम ये तो मन में रहता है। नहीं तो बाहर की दुनिया में यदि हमें भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो हमें ये भुलाना पड़ता है अपने आप को कि हमारी मृत्यु आने वाली है, नहीं तो उत्साह कहाँ से आएगा। यदि हमें मन में ध्यान रहेगा कि मृत्यु आएगी एक दिन, और मृत्यु के साथ साथ हमारी सारी योजनाएं समाप्त हो जाएंगी, हमारा धन हमसे छीन लिया जाएगा, हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी, हमारा कुटुंब हमसे छीन लिया जाएगा, सब कुछ छीन लिया जाएगा हमसे, हमारा कुछ भी नहीं रहेगा हमारे साथ, केवल हमारी चेतना बनी रहेगी, हमारे पाप पुण्य साथ में जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा। तो फिर व्यक्ति सोचेगा कि मैं इतना परिश्रम कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं। तो यदि व्यक्ति ये नहीं सोचे कि मेरी मृत्यु होनी है, तो बड़े उत्साह से वो अपने भौतिक जीवन में प्रयास कर सकता है। इस विचार से प्रयास करेगा कि मृत्यु कभी आनी नहीं है, तब बड़ा उत्साह आता है ना। फिर खूब धन कमाएंगे, खूब भोग करेंगे कि मृत्यु तो नहीं आएगी, तो चलते रहो, ऐसे जीते रहो कि मानो हम अमर हैं। तो चाणक्य पंडित इसलिए कहते हैं कि जो भौतिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं उनको भूल जाना चाहिए कि मृत्यु आनी आएगी एक दिन, परंतु जो बुद्धिमान हैं और जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं उनको याद रखना चाहिए कि मृत्यु आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि 2400 घंटे हमें डर के रहना चाहिए, आएगी मृत्यु, आएगी आएगी आएगी, कब आएगी कब आएगी, तब तो हम पागल ही हो जाएंगे। ऐसे डर डर के रहने की बात नहीं है, बल्कि डर से मुक्त होने की बात है। जो भौतिकवादी आदमी है मृत्यु के बारे में इसलिए नहीं सोचता है कि वो भयभीत है, वो डरता है मृत्यु से, क्योंकि मृत्यु का मतलब है उसके सारे योजनाओं की समाप्ति, उसके सारे सपने भंग हो जाने हैं मृत्यु के समय, इसलिए वो डरते हैं। परंतु सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज को उपदेश दिया था मृत्यु के डर से मुक्त होने के लिए, इसलिए तो परीक्षित महाराज आए थे वहां पर। परीक्षित महाराज के भागवत सुनने का उद्देश्य था कि कैसे हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने सर्वप्रथम परीक्षित महाराज को कहा था, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, कि हे राजन, जो व्यक्ति मृत्यु के द्वार पर खड़ा है और मृत्यु के कारण थोड़ा भयभीत है, उसे यदि इस भय से मुक्त होना है तो उसे क्या करना चाहिए? श्रोतव्य सुनना चाहिए, कीर्तव्य बोलना चाहिए, स्मर्तव्य स्मरण करना चाहिए। किन के बारे में? भगवान ईश्वरो हरि ही, भगवान श्री हरि जो कि भगवान हैं, ईश्वर हैं, ऐसे भगवान का स्मरण, कीर्तन और श्रवण करना चाहिए। ऐसे करने से हम मृत्यु का सामना निर्भय होके कर पाएंगे। तो भक्ति मार्ग में जब हम कहते हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि मृत्यु आएगी, हमें डर डर के नहीं रहना चाहिए, परंतु मृत्यु को याद रखने का अर्थ है कि हमें ऐसे जीवन बिताना चाहिए जिससे कि हम मृत्यु जब भी वो आएगी उसके लिए तैयारी करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी साल भर में कांपते कांपते नहीं रहता है कि परीक्षा आएगी अंत में, साल के अंत में परीक्षा आएगी परीक्षा आएगी, डर डर के सारा साल नहीं बिताता है, परंतु कम से कम याद रखता है कि परीक्षा आएगी, ताकि हम तैयारी करते रहें। साल भर हम स्कूल में कॉलेज में पाठ में शामिल हों, अध्यापक से सुने, रोज घर में जाके हम पढ़ाई करें, वो सतर्क रहता है, सावधान रहता है, क्रियाशील रहता है। उसी प्रकार से हमें भी हमारे आध्यात्मिक कार्यों में क्रियाशील रहना है और हमारे जीवन के ध्येय को कभी भूलना नहीं है, कभी भटक नहीं जाना है, पथ भ्रष्ट नहीं होना है। इसलिए हमें ये याद रखना है कि मृत्यु आनी है, हमें हमारी भौतिक योजनाएं समाप्त होनी है, केवल भगवान की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना है, इसके लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है, ये हमें याद रखना है। तो सुखदेव गोस्वामी वहां पर आए और महाराज परीक्षित को उन्होंने भय से मुक्त कर दिया। भागवत की कथा कह के। और ऐसे ही हमें भी प्रयास करना है सुखदेव गोस्वामी के पद चिन्हों में चल के। सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित से ये कहा, आयुर हरति वैपुंसाम उद्यन अस्तम चयन असो तस्यर्त यत क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक, जिनके जिनका गुणगान श्रेष्ठ या उत्तम श्लोकों में कविताओं में किया जाता है, या वो भगवान जो तम ये अंधकार या अज्ञान से हमेशा परे रहते हैं और अन्यों को ऊपर अंधकार से ले भी जाते हैं, उन उत्तम व्यक्ति ये भगवान के बारे में जो श्लोक है वो भी उत्तम श्लोक है। तो भगवान भी उत्तम श्लोक है, उनके बारे में जो श्लोक है वो भी उत्तम श्लोक है। तो ऐसे भगवान के बारे में जब हम वार्ता करते हैं, हम श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करते हैं, तो हम शाश्वत जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो काल का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। जब हम भगवान की कथा नहीं करते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते हैं, तो उस समय काल का प्रभाव पड़ता है। अब काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त बूढ़ा नहीं होगा, भक्त के बाल सफेद नहीं हो जाएंगे, भक्त बीमार नहीं हो जाएगा, ये मतलब नहीं है। काल का प्रभाव भक्त के ऊपर नहीं पड़ता है, इसका मतलब है कि वो शाश्वत जीवन की ओर आगे बढ़ते जा रहा है, और जब मृत्यु आएगी तो उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। काल के चंगुल से मुक्त होकर वो भगवान के धाम में पहुंच जाएगा और वहां शाश्वत जीवन भगवान के सानिध्य में बिताएगा। परंतु जो भगवान की कथा में, भगवान के नामोच्चारण में अपना नाम नहीं बिताते हैं, अपना समय नहीं बिताते हैं, तो वो तो केवल मृत्यु के एक दिन करीब पहुंचते हैं। हर सूर्योदय और सूर्यास्त जो है, इससे वो मृत्यु के एक दिन करीब पहुंचते हैं, और मृत्यु मतलब पुनर्जन्म के लिए एक द्वार है, बंधन का ही एक द्वार है ये। इसलिए जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो मृत्यु से घबराते हैं, परंतु भक्त निडर रहते हैं। मृत्यु के पहले हो, मृत्यु के समय है, मृत्यु के बाद में हो, भक्त भगवान की ही सेवा करता रहेगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं कि भक्त के लिए मृत्यु या काल ये कोई भय की बात नहीं होती है। भक्त के लिए मृत्यु वैकुंठ जगत के लिए एक द्वार मात्र हो जाता है, बल्कि मृत्यु भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए उसके लिए एक स्वागत का अवसर हो जाता है। भगवान और उनके दूत स्वागत करने के लिए तैयार हैं। क्या हम तैयार हैं? आप सब तैयार हैं? अभी आ जाएगी मृत्यु, तैयार है? कितने भक्त तैयार हैं? हाथ ऊपर कीजिए। कितने भक्त सोच रहे अभी और बहुत सी चीजें करनी हैं, अभी योजनाएं हैं, अब योजनाएं बनानी हैं, अभी बहुत कुछ काम है, भैंसों का देखभाल करना है। सुना है ना वो कथा आपने, तो तैयारी बहुत करनी है। कोई सोचे नहीं अभी हमारी उम्र नहीं है, ऐसे कोई सोच रहे हैं? हमारी तो उम्र इस समय ऐसे नहीं है, तो इसके लिए हमें क्यों चिंता करनी चाहिए? लेकिन भाग्य में कोई उम्र की कल्पना या विचार नहीं होता। छोटे बच्चों की मृत्यु भी हो सकती है, बड़ों की हो सकती है, कोई 90 साल 100 साल भी जीते हैं और फिर भी मरने का नाम ही नहीं लेते। कोई लोग कम उम्र में भी चले जाते हैं, कोई जन्म लेने के पहले माँ के गर्भ में ही चले जाते हैं। तो किसकी मृत्यु कब आनी है ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आएगी निश्चित। इसलिए व्यक्ति को चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो तैयार रहे और अपना समय गंवाए नहीं। और फिर सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक कहते हैं तरवह किम न जीवंती, बोलिए तरवह किम न जीवंती, भस्त्रह किम न श्वसंत्युत, भस्त्रह किम न श्वसंत्युत, न खादंती न मेहंती, न खादंती न मेहंती, किं ग्रामे पशवो परे, किं ग्रामे पशवो परे। सुखदेव गोस्वामी अब ये बताने जा रहे हैं कि क्यों हमारी आयु भगवान की सेवा करते करते हमें बितानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य जीवन का मूल्य क्या है, ये कहना चाह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और फिर कहते हैं यदि कोई मनुष्य केवल जी रहा है, भगवान की सेवा नहीं करता, भगवान के नाम नहीं लेता, भगवान के बारे में कथाएं सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं करता है, तो फिर वो तो केवल पशु के समान है, पशु तुल्य है ऐसा व्यक्ति। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तरवह किम न जीवंती, यदि केवल जीना ही है भगवान के भजन किए बिना तो पेड़ भी तो जी रहे हैं। तरवह किम न जीवंती के तरु, तरु मतलब पेड़, तो क्या पेड़ नहीं जी रहे हैं? इतने सारे पेड़ हम देख रहे हैं, अपनी जगह में सब खुश लग रहे हैं, देखिए कितने खुशी से झूम रहे हैं पवन में, देखिए पेड़ों को, आपको लगता है ये दुखी है? देखिए नारियल का पेड़ है, दिखने में सुंदर है, नारियल देना बंद नहीं कर रहा है, सबको अपना फल दे रहा है, छाया दे रहा है। नारियल के पेड़ को वैसे कल्प वृक्ष कहते हैं, तरह तरह की इच्छाओं की पूर्ति करता है। इस पेड़ का हर एक भाग मूल्यवान होता है, लाभदायक होता है मनुष्यों के लिए, अपना सर्वस्व अन्यों के लाभ के लिए दे रहा है, फिर भी खुश है, झूम रहा है पवन में, सुखी है, कोई तरह के तनाव नहीं है उसके मन में, वो भी जी रहा है ना। इतने सारे पेड़ हैं, सब जी रहे हैं, कोई कंजूसी नहीं करते हैं अन्यों की भलाई के लिए, कुछ देने के लिए कभी हिचकिचाते नहीं हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य केवल जी रहा है, जीवन काट रहा है, आयु है उसकी, तो क्या पेड़ भी तो जी रहे हैं? तो भैया हम भी भगवान की भक्ति नहीं करें तो हम में और पेड़ में अंतर क्या है? भले पेड़ का फायदा इतना भी तो हो सकता है कि वो नारियल देते हैं भगवान की सेवा के लिए, वो नारियल तो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो पेड़ का इस्तेमाल भगवान की सेवा से कोई कर सकता है, तो उसका मतलब है कि वो पेड़ श्रेष्ठ है जिसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा रहा है, उस व्यक्ति के हिसाब से जो कि जीते जी भगवान की सेवा नहीं कर रहा है। तरवह किम न जीवंती, तो क्या ये पेड़ नहीं जी रहे हैं? ये ऐसा सुखदेव गोस्वामी बोलना चाह रहे हैं। और जहां तक जीने की बात है, हमारे जीवन की अवधि कितनी है, कितने साल की है? 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल। परंतु ऐसे पेड़ हैं जो 500 वर्ष जीते हैं, 1000 वर्ष जीते हैं, कोई 5000 वर्ष तक रहते हैं, हजारों वर्षों तक कई पेड़ जीते हैं। प्रभुपाद जी बताया करते थे कलकत्ता के बोटैनिकल गार्डन में ऐसे पेड़ है जो बहुत पुराना है, वट वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष, बहुत पुराना है। तो ऐसे कई पेड़ हैं जो काफी लंबे समय तक जीते हैं। तो जीना ही है तो पेड़ हमसे ज्यादा समय जीता है, जीवन की अवधि तो पेड़ की ज्यादा होती है हमसे। तो यदि जीना ही है तो मनुष्य देह क्यों फिर पेड़ का देह लेना चाहिए? यदि लंबा समय लंबा जीवन जीने का ही उद्देश्य हमारा है और भगवान का भजन नहीं करना है तो पेड़ का शरीर धारण कर लो, तरवह किम न जीवंती, क्या पेड़ नहीं जी रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। फिर भस्त्रह किम न श्वसंत्युत, केवल यदि सांस लेने की बात है, व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर रहा है और सोच रहा है कि सांस लेते रहना चाहिए बस, तो क्या जो लोहार का भस्त्र होता, भस्त्र कहते हैं ना उसे, भाता, भाता वो मराठी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? भस्त्र, भस्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जो लोहार अपने भस्त्र को चलाता है, आपने देखा होगा, आप में से कितने भक्तों ने देखा है, लोहार जब अपना काम करता है वो भी सांस लेता है, ऊपर नीचे उसका बढ़ते रहता है, कभी हवा भर जाता है, जैसे हमारे फेफड़े भी हैं उसी प्रकार के हैं ना, हवा से भर जाते हैं फिर हवा निकल जाती है, जैसे साइकिल के टायर में आप हवा भरते हैं या गाड़ी के टायर में हवा भरते हैं, आपने देखा होगा जब गाड़ी पंक्चर हो जाती है तो कैसे हो जाके हवा भरना पड़ता है, तो हवा भरता है फिर हवा निकल जाती है, हवा भर जाती फिर निकल जाती है, वैसे जो लोहार है वो भी ऐसे हवा निकालते रहता है, भरते रहता है उसके यंत्रों में। तो जहां तक सांस लेने की बात है, केवल सांस ही लेना है, तो ये क्या है, हवा अंदर लेना निकालना, अंदर लेना निकालना, बस इतना ही है ना। तो जो व्यक्ति सांस ले रहा है और सांस निकाल रहा है, यदि वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसमें और लोहार के भस्त्र में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। एक प्राणायाम है जो भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं उसमें, है ना, जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम? आप में से कौन है भस्त्रिका प्राणायाम, वो कैसे होता है कोई करके दिखाएंगे? बस लोहार के उसकी समय तो उस यंत्र के समान ही है, निकालो सांस, निकालो लो, निकालो लो, निकालो लो, वो भी ऐसे करते रहता है। तो ऐसे मनुष्य में और इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, इतना ही है कि वो जी रहा है पेड़ की तरह और उस भस्त्र की तरह वो सांस ले रहा है, हवा अंदर ले रहा है छोड़ रहा है, ले रहा है छोड़ रहा है। तो वैसे कहने के लिए मनुष्य है, लेकिन भगवतहीन जीवन का कोई मूल्य नहीं है। और फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, न खादंती न मेहंती किम ग्रामे पशवो अपरे, तो क्या गांव में ऐसे पशु नहीं है जो खा रहे हैं, संतान की उत्पत्ति कर रहे हैं? यदि हम सोच रहे हैं कि हम भी मनुष्य हैं लेकिन हम भगवान की भक्ति नहीं करना चाह रहे हैं और हम खा रहे हैं, संतान की उत्पत्ति आदि कर रहे हैं, तो क्या जो गांव में पशु हैं वो ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं? क्या पशु नहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं? क्या पशु, पशुओं का कोई समाज नहीं होता? वृंदावन में बंदरों का तो बड़ा बड़ा समाज होता है, जब घूमते हैं तो उनके झुंड के झुंड साथ में जाते हैं, कभी 20-25 एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कभी कभी हमारे स्थान में आ जाते हैं तो बस एक साथ में 20-50 बंदर आ जाते हैं। उनका भी समाज होता है, उनके भी बच्चे होते हैं, उनके भी तरह तरह की राजनीति है चलती है उनके बीच में, उनके नेता हैं, उनके ये है वो है, समस्याएं हैं। जैसे मनुष्य समाज है वैसे भी उनके बीच में मतभेद होते हैं, चलता रहता है उनके समाज में भी, कि क्या अंतर है? वो भी खाते हैं, पीते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, परिवार का देखभाल करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अभी टीका कर रहे हैं उन मनुष्यों के ऊपर जो अपना समय भगवान के लिए नहीं बिताते हैं, वो कहने जा रहे हैं कि उनका जीवन भी पशु तुल्य है, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं वही चीज जो पशु भी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी, सुखदेव गोस्वामी ऐसे कहते हैं। और जो बड़े बड़े संत हुए हैं उनकी आयु ज्यादा नहीं थी, चैतन्य महाप्रभु कितने वर्षों तक जिए आपको पता है? पहले 24 साल उनकी आदि लीला है, उन्होंने सन्यास आश्रम को स्वीकार किया 24 साल की आयु में, उसके बाद केवल 24 साल और वो रहे, बस ज्यादा समय नहीं, 80 90 100 साल तक तो रहे नहीं, लेकिन उनके जीवन का मूल्य देखिए। कम समय रहकर उन्होंने सारे दुनिया के लिए क्या किया, दुनिया के हित के लिए उन्होंने कितने सारे काम किए। अभी आने वाले अनेक 10,000 सालों तक लोग महाप्रभु के जीवन का लाभ उठा पाएंगे, जो उन्होंने दिया है सारे दुनिया के लिए। आने वाले हजारों वर्षों तक वो लाभदायक रहेगा। तो उनका जीवन कितना लाभदायक था अन्यों के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए। परंतु जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है, वो तो केवल अपने लिए जीता है और उसका जीवन व्यर्थ होता है, किसी को लाभ नहीं होता है उसके जीवन का, अन्यों को तो होता ही नहीं है, और खुद अपने हित के लिए भी वो कार्य नहीं करता है। तो उसका जीवन उसके भलाई के लिए भी नहीं होता है, अन्यों की बात तो दूर है। तो ऐसे अभक्त के जीवन से किसी की भलाई नहीं होती है, न स्वयं की न अन्यों की। और ऐसे व्यक्तियों को भगवान के मार्ग में लाना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आगे चल के प्रहलाद महाराज कहते हैं, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा मिथो विपद्येत ग्रह व्रतानाम अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चरवणानाम। वो कहते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जिनकी मति कृष्ण के प्रति उत्पन्न होती ही नहीं है। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा, यदि कोई दूसरा व्यक्ति उनके कृष्णमति को जागृत करने का प्रयास करे, या स्वतः वो अपनी ओर से प्रयास करे, वो कृष्णमति आती नहीं है। मिथ दोनों ही, या दोनों के प्रयास से, दूसरा भी करे हम अपना भी प्रयास करे, फिर भी व्यक्ति के हृदय में कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है। मतिर न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत, ऐसे क्यों होता है? गृह व्रतानाम, क्योंकि उसने एक प्रकार का संकल्प ले लिया है कि मुझे संसार का भोग ही करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब किसी को मिलते तो उनको आशीर्वाद देते, उनका आशीर्वाद यही हुआ करता था, कृष्णे मतिरस्तु, तुम्हारे हृदय में तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए, यही सच्चा आशीर्वाद है। केवल आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, इतना ही कहना काफी नहीं है। हमें चाहिए कि कैसे हमारे जीवन में भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए। इसलिए उनका आशीर्वाद हुआ करता था कृष्ण मतिरस्तु। तो ऐसे कृष्ण की मति, मतिर न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो विपद्येत गृह व्रतानाम, इसलिए होता है क्योंकि लोग भोग से बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया पहरत चेतसाम व्यवसायात्मका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि जो लोग भोग से बहुत अधिक आसक्त होते हैं, उनके मन में वो स्थिरता, वो एकाग्रता भगवान की भक्ति के प्रति उत्पन्न नहीं हो सकती। वो एकाग्र चित्त जो भक्ति के लिए चाहिए वो उनके मन में नहीं आती, क्योंकि ये बहुशाखा अनंत हैं। उनका चित्त जो है तरह तरह के दिशाओं में भटक रहा है, कभी इधर भोग के लिए, कभी उधर भोग के लिए, क्योंकि भोग के लिए तो साधन अनेक हैं, भोग के लिए मार्ग भी अनेक हैं, पद्धतियां अनेक हैं। माया देवी तो हर समय प्रलोभन देती रहती हैं, भोग के लिए नए नए तरीके उत्पन्न होते हैं। और आजकल लोगों की विचारधारा बस इसी में है कि भोग के नए तरीकों का संशोधन करना, करके आविष्कार करना, तरह तरह। अभी बंबई से हम आए हैं तो वहां देखें हर दिन कुछ नई चीज भोग के लिए, शॉपिंग मॉल बड़े 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 बने हैं, और ऐसे शॉपिंग मॉल में हमने विज्ञापन देखे तो उसमें एक विज्ञापन ये था कि यदि आपके हृदय में कोई भय नहीं है तो हर चीज की शुरुआत होती है, तो यहां हमारे कार्यक्रम में आइए। वो कहना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम में वो आपको भयभीत कराएंगे। जैसे कि आदमी पर्याप्त मात्रा में डरा हुआ नहीं है, वो पैसे देके भी डरना चाहता है। वो पैसे देगा, वहां कुछ भयंकर कुछ आवाज संगीत कुछ क्या कुछ होगा अंदर उस सिनेमा के अंदर या जो भी है अंदर, जैसे आदमी वास्तव में डर जाएगा। वो कहते हैं, गारंटी देते हैं कि आप डर जाएंगे, तो डराने की गारंटी दे रहे हैं। जैसे कि भौतिक जीवन में डरने के लिए कोई गारंटी की आवश्यकता है? हर एक आदमी डरा हुआ है हर तरह से, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। अब माया का प्रलोभन देखिए, माया की बुद्धि देखिए और लोगों की बुद्धि देखिए किस प्रकार की है। वैसे माया तो मुफ्त दे रही है सबको, बिन बुलाए सबको भय दे रही है, लेकिन यहां हम अपने परिश्रम से कमाए वो पैसा दे रहे हैं डरने के लिए। वहां जाके तरह तरह के आवाजें आएंगी, संगीत आएंगे, तरह तरह के भयानक चित्र दिखेंगे, एक ऐसा माहौल उत्पन्न होगा जिसमें हम बहुत डर जाएंगे। ये कई ऐसे खेल होते हैं जो आपको ऊपर नीचे ले जाते हैं, कहते हैं गारंटी आप डर जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे नीचे आते समय एकदम से आपको छोड़ देंगे ताकि आप ढूंढ गिर जाएंगे, गिरते गिरते आपको डर उत्पन्न होगा। तो कैसे कैसे मनोरंजन के तरह, कैसे कैसे नए भोग के तरीकों का आविष्कार हो रहा है, तो ये है संसार का अज्ञान। तो डर भी एक भोग है, यह भी एक अभी समझाया जा रहा है, डरने को सिखाया जा रहा है लोगों को कि डर के भी भोग किया जा सकता है और लोग पैसा दे रहे हैं इसके लिए। छोटा कम पैसा नहीं होता, कभी 400, 500, 1000 रुपए के नीचे शायद नहीं होता है ये, डरने के लिए वो लोग दे रहे हैं। तो डरने के लिए कितने तरह 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 की चीजें हैं। आजकल टेलीविजन के कार्यक्रम बनाने वालों के लिए, सिनेमा बनाने वालों के लिए, पत्रकार के और उपन्यास लिखने वालों के लिए, संपादकों के लिए ये बड़ा विषय बन गया है कि आजकल लोगों का मन जो है इतना विचलित रहता है, इतना चंचल रहता है कि उनको किसी मनोरंजन के एक कार्य में स्थिर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आजकल तो 24 घंटे टेलीविजन आदि चलता है, तो कैसे लोगों को आकर्षित करें ताकि वो हमारे चैनल को देखते रहें, हमारे पत्रिका को पढ़ते रहें, हमारे समाचार पत्र को खरीदते रहें। ये बड़ी समस्या इनके लिए हो गई है, इसलिए इनके लोग निरंतर विचार करते हैं, भोग के नए नए साधन और पद्धतियों का आविष्कार करने में लगे हुए हैं, क्योंकि भोग हमारे मन को स्थिर नहीं रख सकता। एक प्रकार का भोग हमें आकर्षित करके नहीं रख सकता, थोड़ी देर के लिए भोग करते हैं फिर उसको भूल जाते हैं, ऊब जाते हैं, दूसरे तरह के भोग के लिए जाते हैं। भोग त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग चलते रहता है। फुटबॉल की तरह माया हमें लात मार के यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, और हम पैसे देते हैं इस चीज के लिए, तो इसलिए मन स्थिर नहीं रहता। तो ऐसे चंचलता के अवस्था में कैसे भगवान के प्रति हम एकाग्र चित्त से मन को लगाए सकते। और आजकल ये मोबाइल फोन है, तरह तरह के तकनीकी जो यंत्र हैं हमारे मन को और भी विचलित करने के लिए। पहले तो कम से कम शांति से दो आदमी बैठ के बात तो कर सकते थे, लेकिन अभी दो आदमी शांति से बात नहीं कर सकते कहीं भी। अचानक फोन बज जाएगा, ध्यान वहां चले जाएगा। एरोप्लेन में आते समय भी, हवाई जहाज में भी, उनको 10 बार 15 बार बोलते रहना पड़ता है, मोबाइल फोन कर, स्विच बंद करिए, बंद करिए, बंद कर, फिर भी लोग बोलेंगे। लोग इतने विचलित होते हैं, और विचलित कराने के लिए और इतने सारे तकनीकी साधन आदि होते हैं। कैसे व्यक्ति का मन स्थिर रह सकता है, कैसे व्यक्ति शांत चित्त का हो सकता है, संभव नहीं है। तो आजकल उन्नति या प्रगति ये क्या है, किस मात्रा में आप व्यक्ति को और ज्यादा विचलित कर सकते हैं, और ज्यादा चंचल कर सकते हैं, ये प्रगति है। यदि व्यक्ति का मन ज्यादा चंचल नहीं है तो उसका मतलब है कि आपका समाज ज्यादा प्रगतिशील नहीं है। जितना ज्यादा व्यक्ति को आप हिला देंगे, उसके मन को अस्थिर करेंगे, चंचल करेंगे, उस मात्रा में आपका समाज जो है सफल है, ऐसे माना जाता है। लेकिन वैदिक सभ्यता क्या है कि व्यक्ति के चित्त को, व्यक्ति के मन को स्थिर किया जाए, जो चंचल और विचलित करने वाले जो अन्य चीजें हैं उनको कैसे दूर रखा जाए, जीवन को कैसे सरल बनाया जाए, सरल जीवन, ऊंचे विचार। परंतु आजकल उल्टा है, ऊंचा जीवन, सरल विचार। इसलिए मन को ज्यादा से ज्यादा विचलित करने का कार्यक्रम है आधुनिक सभ्यता का। तो सुखदेव गोस्वामी यहां बतला रहे हैं कि ऐसे भोग के वृत्ति से आवृत व्यक्ति कभी भी भगवान की ओर अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाता है। आप देख सकते हैं कि जो अभक्त है वो आते हैं, प्रवचन में बैठ नहीं सकते, वो दो बातें सुनते हैं, बात करते करते उनका मन इधर उधर चले जाता है। आजकल आप देखिए, आप किसी से बात करते समय देखिए, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का मन स्थिर नहीं है, वो आप जो कह रहे हैं वो भी ध्यान से सुन नहीं पाएगा। आपसे बात कर रहा है लेकिन आप समझ पा रहे हो कि उसका मन 10 चीजों में और घूम रहा है। आजकल लोग ऐसे हो गए, उनका मन इतना इधर उधर खींचा जा रहा है, तरह तरह के विचार, समस्याएं, तनाव, यहां के विचार, वहां के विचार, 10 चीजें एक साथ उसके ध्यान के लिए प्रतियोगिता कर रही हैं, स्पर्धा चल रहा है। मैं इसका मन आकर्षित करूं, दूसरा विषय कह रहे नहीं मैं इसका मन आकर्षित कर दूंगा। ये चल रहा है कलयुग में। इसलिए लोग एक जगह बैठना नहीं पसंद करते। आप रेलगाड़ी में देखिए, आपके सहयात्रियों को देखिए, उनका व्यवहार कैसे होता है। या तो वो दिन भर बात करेंगे, इधर उधर कुछ ना कुछ खाएंगे, कुछ करेंगे, शांति से नहीं बैठेंगे। शांति से बैठेंगे तो सो जाएंगे। या तो वो रजो में रहेंगे या तमो में रहेंगे। लेकिन सात्विक अवस्था में रह के कुछ काम करना है, कुछ चर्चा करनी है, कुछ पढ़ाई करनी है, कुछ करना नहीं, संभव नहीं। या तो सो जाएंगे तमो या रज। कितना खाते हैं लोग रेलगाड़ी में, और रेलगाड़ी में तो बस लोग आते ही रहते आते, कुछ काम नहीं है ना दूसरा, तो बस खाना है, सोना है, खाना सोना, खाना सोना। ऐसे 24 घंटे रेलगाड़ी में बिता लिए, चले गए। और इसलिए इतने होटल, इतने सब बने हैं, जगह जगह लोग जा रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन यही विषय है बस। आते आते हम देख रहे थे, कल कोई अखबार पढ़ रहे थे, अखबार में लंबा लेख था, कोई एक दंपति हैं, वो बतला रहे हैं सबसे अच्छी बिरयानी हमने कहाँ खाई, उसके बारे में इतना आधा पेज का लेख है। अरे किसको क्या रुचि है कि आपने क्या खाया, कहाँ आपको सबसे अच्छा कौन सा भोजन लगा, वो उनका सारा बड़ा लेख। ऐसे लोग कितना समय बर्बाद करते हैं, कैसे व्यर्थ के विषय विषय विचार, और ऐसे ही अखबार में भरे हुए हैं विषय। अरे किसने कहां कौन सी बिरयानी खाई, उससे क्या किसको क्या मतलब है, कौन सा महत्व का विषय है ये। परंतु लोग यही पढ़ना चाहते हैं, यही सुनना चाहते हैं, क्योंकि और कोई उनको काम नहीं है, मनोरंजन उनके लिए कोई ना कोई विषय चाहिए। तो फिर ऐसे वातावरण में लोगों को भक्ति में एकाग्र चित्त से कैसे लाया जाए। इसलिए भक्तों का संग है यही एकमात्र तरीका, ये तपस्या हमारे लिए है। कैसे एक जगह बैठ के भगवान की कथा में ध्यान दें, एक जगह बैठ के हम जप करें। देखिए मन की अस्थिरता और शरीर की अस्थिरता इनमें संबंध होता है। जब मन अस्थिर होता है तो शरीर भी अस्थिर होता है। आपने बच्चों को देखा होगा ना, बच्चे कैसे होते हैं, एक जगह बैठते हैं एक जगह बैठेंगे भी तो इधर उधर इधर उधर हाथ उधर इधर किए। रेलगाड़ी में जाते हैं बच्चे, हमेशा हमारे प्रारब्ध है शायद, हमेशा कोई रोने वाला बच्चा होता है और रात को सोने वाला कोई खर्राटे मारने वाला होता है। ये दो में से एक कोई ना कोई हमने देखा है, हमने विश्लेषण किया है हमारे ये रेल यात्राओं का, दो में से एक अवश्य कहीं ना कहीं होता है। तो बच्चे सामने बैठे हैं, कुछ न कुछ पैर हिलाएंगे, कुछ करेंगे हाथ ऐसा वैसे, और बालक कुछ न कुछ उनको बोलते रहेंगे, चुपचाप बैठो सीधा बैठो ऐसे बैठो वैसे बैठो। क्यों? क्योंकि मन चंचल होता है, मन की चंचलता से शरीर की चंचलता होती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति आजकल एक जगह बैठ नहीं सकता है। इसलिए हम जबरदस्त नियम बनाते हैं, बैठ के जप करो, फिर थोड़ी देर के लिए भले चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप के लिए एक अभ्यास करना चाहिए कि एक जगह बैठ के हम जप करें, बैठ के पढ़ें, बैठ के सुनें, बैठ के बोलें, ताकि एक अभ्यास हो जाता है, एक संयम डिसिप्लिन हो जाता है कि हाँ चलो बैठना है। जब जबरदस्ती शरीर को बिठाएंगे एक स्थान में रखेंगे तब उल्टा भी प्रभाव पड़ता है, मन भी शांत हो जाता है, मन भी नियंत्रित हो जाता है। यदि बैठेंगे नहीं एक स्थान पर तो मन भी इधर उधर हमें ले जाएगा। इसलिए मन और शरीर दोनों का एक संबंध है, और यदि हम एक स्थान में बैठते हैं क्योंकि ऐसे स्थिर रखने की आदत नहीं है तो सो जाते हैं। सबसे सरल उपाय है मन के लिए, क्योंकि स्थिर बैठने की आदत नहीं, इतना रजोगुण का प्रभाव इतना ज्यादा है, सत्व की ओर जाने का प्रयास करते हैं तो मन खींच के हमें तमो की ओर ले जाता है। इसलिए कभी कभी हमें प्रयास करना चाहिए, बस एक जगह बैठने का अभ्यास करना चाहिए। मन खींच रहा है हमें, मन तो चीख रहा है अंदर, उठो उठो भागो कुछ करो, लेकिन नहीं, मन को कहना चाहिए बैठो स्थिर रहो, अभी आवाज नहीं करना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, सुबह हम उठते हैं तो हजार बार जूते से मन को पीटना चाहिए, और सोने के पहले रात को झाड़ू से 100 बार मन को पीटना चाहिए। कहने का मतलब है कि मन को वश में करने के लिए थोड़ा दबाव लगाना चाहिए कभी कभी मन के ऊपर, और ऐसे मन को एक स्थान में चित एक केंद्रित करने के लिए ऐसे प्रशिक्षित करना चाहिए। तो हमारे लिए तपस्या है, हम सत्संग में बैठे हैं, 1 घंटे 2 घंटे बैठे हैं, मन कितना तकलीफ दे रहा है ना, मन तकलीफ। अभी हम ये बातें कह रहे हैं, सुनते सुनते भी मन कितने सारी बातें आपको सुना रहा है। नहीं, ये बातें प्रवचन बोल रहे उनका काम है, बोले रहते हैं, लेकिन हमारा मन क्या है, कह रहा है नहीं ऐसे बैठो वैसे बैठो, सो जाओ उठो, चलो चले जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, या कम से कम शरीर से नहीं जा सकते हैं, दिखाई पड़ेगा शरीर से उठ रहे हैं जा रहे हैं तो सबको दिखाई पड़ेगा, मन घूमेगा किस कौन देखेगा। चलो मन तो मन में से घूमे, इधर घूमे उधर घूमे, आंख भी खुले हैं, लग रहा है कि ध्यान से सुन रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन मन घूम रहा है, जगह जगह जा रहा है मन। इसलिए आजकल तपस्या है एक जगह बैठना। अरे मन को केंद्रित करना ये तो दूर की बात है, ये बाद में आएगी, सबसे पहले शरीर को स्थिर रखना चाहिए फिर मन को। इसलिए ऐसी चीजों के लिए योगाभ्यास का भी थोड़ा बहुत फायदा होता है। आप देखिए कई लोग उनको बोलिए कि आप योगाभ्यास कीजिए, नहीं होता, लेकिन खेल कूद करिए, कोई फुटबॉल खेलिए तो खेलने लगते हैं। लेकिन ये एक जगह बैठ के स्थिर करना है ना शरीर को, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये भी हमारे साधन के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, एक जगह बैठो बस। दिन भर में हमें ये अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए, थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। ये हमारे मन को स्थिर करने के लिए भी महत्वपूर्ण बात है। कितनी सरल बात है ना, क्या है, एक जगह बैठो बस, इतना ही हम करें, और बैठ के सोए नहीं, कोई अच्छा कार्य भक्ति का कार्य करे, सुने बोले पढ़ें, तो ऐसे करते रहने से धीरे 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 से मन प्रशिक्षित हो जाता है और फिर आगे चल के और प्रशिक्षण जैसे बढ़ती जाएगी वैसे मन को हम भगवान पे ज्यादा केंद्रित कर पाएंगे। लेकिन जितना इंद्र तृप्ति का वातावरण ज्यादा बढ़ता है और उस वातावरण में हम जाते हैं उतना ही हमारा मन और विचलित हो जाएगा। जगह जगह जाते हैं, तरह तरह के विज्ञापन हमारा मन प्रलोभित करते हैं, अरे ये खरीदो इससे सुख प्राप्त मिल जाएगा, ये टीवी है, ये कैलकुलेटर है, ये मोबाइल फोन है, ये है सिगरेट है, ये है वो है, तरह तरह की चीजें चमक धमक। कल शाम को यही चर्चा कर रहे थे, आजकल दुनिया का चमक धमक सबको आकर्षित कर रहा है, ये सब माया के प्रलोभन हैं। ऐसे सब प्रलोभनों के द्वारा माया हम सबको और अस्थिर बनाना चाह रही है, चंचल बनाना चाह रही है, और हम प्रगति के नाम पे ये चमक धमक को बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन ये नहीं जानते हैं कि कितना नुकसान इससे हो रहा है। दुनिया के चमक धमक से हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है ऐसे कि जो भी चमकता है वो सोना नहीं है, कहावत सुनी होगी आपने। तो जब दुनिया के बाहर के चमक धमक को से आकर्षित होकर हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए कि यही सत्य है, यही अच्छा है हमारे लिए, यही मूल्यवान है। पहले भी 50 साल पहले भी जीवन कितना सरल हुआ करता था, आदमी कितने शांत थे। आजकल जिस मात्रा में जिस हद तक चमक धमक दुनिया में बढ़ते जा रहा है उस हद तक व्यक्ति का मन भी विचलित और चंचल होते जा रहा है और उतना मुश्किल हो रहा है व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में अपना मन केंद्रित करने के लिए, जप करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, श्रवण करने के लिए। और फिर वातावरण ऐसा बन गया है चमक धमक के द्वारा कि जो ज्यादा से ज्यादा नियमों का भंग करते हैं उनको ज्यादा एक स्थान दिया जाता है समाज में, वो ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं, ऐसे लोगों को श्रेष्ठ माना जाता है। पहले उन लोगों को श्रेष्ठ माना जाता है तो जो राज ऋषि थे, भले उनके जीवन में चमक धमक क्यों नहीं था लेकिन वो राज ऋषि थे, राजा भी थे ऋषि भी थे, और संतों के हमेशा अधीन रहा करते थे, ब्राह्मणों के कहने के अनुसार राज्य को चलाते थे, अपना निजी जीवन को भी चलाते थे। परंतु आदर्श कौन थे हम सबके लिए? पहले ऐसे सब बड़े राज ऋषि थे या तो ऋषिगण थे, अच्छे लोग थे, ऐसे चरित्रवान लोग, धर्मपरायण लोग, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े हुए लोग, ऐसे लोग हमारे जीवन में आदर्श हुआ करते थे और इनको सामने देख के हम अपना जीवन बिताते थे। लेकिन आजकल केवल बाहरी चमक धमक मात्र बढ़ गया है और कुछ नहीं, और सब गलत लोग चमक धमक के दुनिया में सामने हैं। क्योंकि बाहरी चमक धमक तो केवल ज्यादा से ज्यादा ऐसे है, अभी एरोप्लेन में घूमना और 5-star होटलों में जाना, शराब आदि के जीवन में रहना, बड़े बड़े पार्टियां रहना, ये चमक धमक चाहिए सभी को। गोलोक चंद्र प्रभु उस दिन बता रहे थे हमको कि आजकल बेलगाम में जगह जगह ये फैशन हो गया है कि नए घर बनाते हैं तो उसमें शराब के लिए एक बार बनाते हैं घर में, जहां टेबल हो, बैठने के लिए ऊंचे स्टूल हो, तो जो भी आए वहां बैठे, ये चमक धमक सबको दिखाने के लिए आजकल का फैशन है कि हर घर में एक शराब का बार होना चाहिए। ऐसे चमक धमक से लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, और जो लोग ज्यादा से ज्यादा नियमों का भंग करते हैं उनकी प्रशंसा होती है, पापी से पापी लोगों की ज्यादा प्रशंसा होती है, अरे इतने अच्छे ढंग से इतना पाप किया, वाह बहुत अच्छा, इतना ज्यादा पापी है, बहुत बढ़िया, इसकी तरह कोई पाप भंग नहीं, कोई पाप नहीं कर सकता, ये सब छोटे मोटे पापी हैं, लेकिन ये इतना श्रेष्ठ पापी है। आप बता रहे थे ना उस दिन प्रभु जी कि आजकल चर्चा लोगों में क्या चलती है कि बड़े बड़े पार्टियां होते हैं और पार्टियों में कोई शराब, सब लोग शराब पीते हैं, और शराब पीने के बाद जो सबसे ज्यादा पीता है और फिर उसका व्यवहार फिर भी ठीक रहता है उसको सबसे श्रेष्ठ माना, इतना पीने के बाद भी उसको नशा नहीं चढ़ा। देखो कितना श्रेष्ठ आदमी है, कितना महान है ये तो हमारा स्वामी है, इसके जैसे हमें बनना चाहिए। तो और अभ्यास करना चाहिए, ज्यादा प्योर नशा नहीं आए, फिर भी स्थिरता से बोले जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे चलने में, फिर भी चल रहा है, देखो कैसे चल रहा है, बिना हिल के चल रहा है, सीधा अभी लाइन में चल रहा है। तो ये है दुनिया के चमक धमक, इतना घोर अंधकार, और ऐसे लोगों की प्रशंसा चल रही है, वाह देखो कितना पी रहा है। पहले के जमाने में कोई व्यक्ति पीता था तो वो अपने गांव में मुंह नहीं दिखाता था, ऐसे हुआ करता था, मुंह दिखाने के लायक नहीं होता था कि दूसरे लोग जानते हैं कि मैं शराबी हूं, मैं शराब पीता हूं या शराब पीने के लिए गया हूं। लेकिन आजकल बिल्कुल उल्टा है, जो शराब नहीं पीता उसको मुंह छुपा के जाना पड़ता है ना, लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे कितने बैकवर्ड हो, कितने पिछड़े हुए हो, शराब भी नहीं पीते हो, अरे आओ क्या मतलब तुम्हारे जीवन का। और जो सबसे ज्यादा पीता है, खाता है, सब कुछ करता है, वो सामने सबके सामने आता, ऐसा भी लोग कहते हैं वाह 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 वाह। तो ये है दशा, गलत लोगों की प्रशंसा करते हैं, गलत लोग आजकल समाज के आदर्श हो गए हैं, और चमक धमक पर ज्यादा जोर देने के कारण हर व्यक्ति पथभ्रष्ट हो रहा है, पतित हो रहा है। तो बेचारे जो नहीं सोचते वो भी आजकल उनके पीछे पीछे करते हैं। आजकल कितने घरों में बाप और बेटा मिलके पी रहे हैं, कितने घरों में हो रहा है। पहले कम से कम एक पिता दूसरे के डर से सामने नहीं आता था, आजकल दोनों सामने बैठ के कर रहे हैं। एक माताजी हमसे मिली थी, कई साल पहले की बात है, वो भक्त बन रही थी, पति नहीं बन रहे थे, पति इस चमक धमक से प्रभावित थे। वो एक बार रोते हुए आई, कोई मेरे पति को तो हम रोक नहीं सकते, वो क्या करे, वो शराब में है, लेकिन हमारे छोटे बच्चे को भी चम्मच से पिला रहे थे। मैं तो गया काम से गया, लेकिन मेरा बच्चा भी मेरे साथ में आना चाहिए। ये है अभी चल रहा है आजकल की दुनिया में, ऐसे प्रगति है, इसको सुख कहते हैं। ये जीवन जीवन ऐसे जीना चाहिए, और इसी बात को सुखदेव गोस्वामी यहां इस श्लोक में दोहराते हैं। देखिए सुखदेव गोस्वामी ने कैसे विश्लेषण किया था, बराबर बिल्कुल ठीक ढंग से कैसे कलयुग में लोग होने वाले हैं उनका वर्णन सुखदेव जी ने बराबर ठीक ढंग से किया हुआ है। तो आइए श्लोक को पढ़ते हैं, बड़ा कठोर है, कटु वचन है सुखदेव गोस्वामी जी के, लेकिन बहुत सत्य है। श्रवित वराहोष्ट्र खरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः नयत् कर्णपथोपेतो जातु नाम कदाग्रजः श्वविद् वराहोष्ट्र खरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः नयत् कर्णपथोपेतो जातु नाम कदाग्रजः। उन लोगों के बारे में अब सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं जो ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं जो कि भगवान के गुणों को या लीलाओं को, नामों को जो सुनते नहीं है। श्व, श्व मतलब कुत्ता, विडवराह मतलब वो सुवर जो गंदी चीजों को खाता है, उष्ट्र अर्थात ऊंट, और खरह, खरही अर्थात गधा। तो संस्तुतः पुरुषः पशुः, तो वो लोग इन चार पशुओं के समान हैं, किनके, कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधे के समान हैं। वो लोग इन चार पशुओं के समान हैं जो उन लोगों की प्रशंसा करते हैं, संस्तुति, संस्तुतः पुरुषः, जो कि नयत कर्णपथो पेतो जातु नाम गदाग्रजः। भगवान श्री कृष्ण का नाम है गदाग्रजः, जिन्होंने गदा धारण किया हुआ है और जो सबको गलत मार्ग से मुक्त करते हैं, उद्धार करते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण कभी नहीं करते, कभी नहीं सुनते हैं, तो अपने कानों के पथ में कभी भी गलती से भी भगवान का नाम प्रवेश करने नहीं देते हैं, भगवान की कथा को प्रवेश करने नहीं देते। तो ऐसे जो अभक्त हैं, जो गलती से भी भगवान की कथाओं को सुनते नहीं है, भगवान के नाम को सुनते नहीं है, ऐसे लोगों की, ऐसे भक्तों, अभक्तों की जो प्रशंसा करते हैं, वो कैसे हैं, कुत्ते के समान है, सुअर के समान है, गधे के समान है, ऊंट के समान है। तो यहां सुखदेव गोस्वामी किनकी निंदा कर रहे हैं, केवल उनकी नहीं जो भक्त नहीं है, लेकिन विशेष करके उनकी निंदा करते हैं जो ऐसे अभक्तों की प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे परस्पर तुम मेरा पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारे पीठ खुजाऊंगा, ये चलते रहता है। ऐसे पीठ खुजाने वाला समाज है, एक दूसरे के पाप में प्रशंसा एक दूसरे की करते रहते हैं, एक दूसरे की बढ़ोतरी करते हैं ज्यादा से ज्यादा पाप करने में। अब ये चार प्रकार के विशेष पशु हैं, इनके बारे में कुछ कहना आवश्यक है। जब इनकी तुलना सुखदेव गोस्वामी जी ने की है तो इनकी प्रशंसा तो हमें करनी चाहिए ना, थोड़े कुछ जानकारी तो इन पशुओं के बारे में होना चाहिए जिनको हम अक्सर देखते रहते हैं। तो पहले सर्वप्रथम है कुत्ता, श्व। कुत्ता का गुण क्या होता है कि वो अपने मालिक की सेवा करता है, और मालिक की सेवा के लिए कभी बहुत भौंकता भी है, और मालिक की सेवा करते करते उसे ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। कभी मालिक उसे लाठी से मारता है, कभी कुछ करता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ऐसे लोग जो कुत्ते की भावना को बनाए रखते हैं, वो भी किसी एक निम्न श्रेणी के कोई दुष्ट व्यक्ति को अपना सेवक बना लेते हैं, अपना प्रभु बना लेते हैं, उसकी सेवा करते हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि आजकल विश्वविद्यालयों में जाकर लोग केवल डिग्रियां प्राप्त करते हैं, जो कागज का टुकड़ा होता है, और फिर इधर उधर जाते हैं किसी मालिक के पास, हमें नौकरी दीजिए, हमें नौकरी दीजिए, हमें नौकरी दीजिए, और कभी कभी मिलता है नौकरी, कभी नहीं मिलता है, और दो पैसों के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, किसी की सेवा करते हैं। वो भक्त हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो उनसे भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने, कौन, शायद कृष्णदास कहते हैं, कृपण दुर्जना, क्या क्या है वो, विफल से विनु कृपण दुर्जना, चपल सुख लग लाविरे। वो कहते हैं इस चपल सुख के लिए, केवल इस थोड़े बहुत क्षणिक सुख के लिए हमने कृपणों की और दुर्जनों की सेवा स्वीकार की है। तो ऐसे लोग करते हैं, और ऐसे लोगों की उनको प्रशंसा करनी पड़ती है, उनकी सेवा करनी पड़ती है। और दूसरे प्रकार के पशु हैं वराहा मतलब सुअर, जो सबसे गंदी चीजों को खाता है। दूसरे शब्दों में जो मनुष्य भी कोई नियम नहीं रखता खाने के बारे में, आहार के बारे में, वो भी ऐसे ही विडवराहा के समान है। गंदी गंदी चीजों को खाना, अभक्ष भक्षण करना, मांसाहार करना, तरह तरह के शराब आदि का पीना, जो जिन चीजों को व्यक्ति को ग्रहण नहीं करना चाहिए उन चीजों का सेवन करना, मादक द्रव्यों का सेवन करना, आजकल तरह तरह के मादक द्रव्य पाए जाते हैं उनका सेवन करना, ये सब वो लोग करते हैं जो ऐसे विडवराहा है, सुअर के समान है, जो गंदी चीजें खाता है। सुअर कभी विवेक नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, जहां भी गंदी चीजें मिलती हैं उन गंदी चीजों को खा लेता है और उनमें ही रमण करता है। बल्कि ऐसे पशु को कोई अच्छे मीठे मिठाइयां जो शक्कर आदि से बने हुई हैं, गुड़ से बने हैं, दूध से बने हैं, ऐसे कोई पदार्थ उस व्यक्ति को खिलाए जाएं या दिए जाएं तो वो स्वीकार नहीं करेगा, उसको अच्छे नहीं लगता, वो अपने गंदे पदार्थों के पीछे ही जाएगा। तीसरे प्रकार के पशु है उष्ट्र या ऊंट। अब ऊंट क्या करता है? ऊंट रेगिस्तान में रहता है या शहरों में भी आजकल आते हैं, बोझ उठाता है अपने स्वामी के लिए, साथ साथ में क्योंकि वो रेगिस्तान में रहता है और वहां तो कांटे वाले ही थोड़े बहुत पौधे मिल जाते हैं, और जब वो चरता है इधर उधर इन कांटे वाले वृक्षों को, पौधों को खा लेता है, कांटों को चबाता है, और कांटों को चबाते चबाते क्या होता है, वो कांटों के द्वारा उसकी जो चमड़ी अंदर के वो कट जाती है, खून बहने लगता है, और उस खून को चखता है और सोचता है कि ये कांटा कितना स्वादिष्ट है। वो सोचता है कि ये जो स्वाद है ये कांटों का स्वाद है, परंतु वास्तव में ये स्वाद जो है उसके निजी खून का स्वाद है, अपने खून को पिए जा रहा है, उसके खून का नुकसान हो रहा है, स्वयं ही खून पी रहा है और सोचता है वाह कितना स्वादिष्ट है। तो इंद्रिय तृप्ति करना या भोग करना मतलब अपने ही खून को त्याग देना, और ऐसे अवस्था में जो भोग करता है, जिसके द्वारा कितना कष्ट मिलता है, उस कष्ट को भी वो सोचता है वाह कितना सुख है, कितना अच्छा लगता है। तो भोग से उत्पन्न होने वाले दुख को जो सुख समझता है, दुनिया के भीतर जितना भी दुख है उसको सुख समझता है, वो भी उस ऊंट के समान है। और फिर अंत में है गधा। गधा वो पशु होता है जो दिन रात बिना वजह मेहनत करता है, केवल थोड़ा सा घास खाने के लिए। उसी तरह से जो व्यक्ति संसार में रहते हुए दिन रात किसी भौतिक चीज के लिए परिश्रम करते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में बिल्कुल विचार नहीं करते हैं, उनके मन में कोई कल्पना ही नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ हमें करना चाहिए, ऐसे केवल अपने थोड़े से घास के लिए, थोड़े से इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत कष्ट लेते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को बुलाया जाए, पूछा जाए कि भगवान की भक्ति करो, भक्तों के संग में आओ, तो उनको ना समय है ना रुचि है, कोई ना कोई बहाने बनाते हैं, ऐसे सारे जिम्मेदारियों से अपने आप को घेर के रखते हैं कि भगवान के लिए बिल्कुल समय होता नहीं है। तो जो लोग अभक्तों की प्रशंसा करते हैं वो ऐसे चार प्रकार के पशुओं की तरह हैं, ऐसे सुखदेव गोस्वामी समझते हैं। उष्ट्राणाम विवाहेषु गर्धबेन जायते। एक बार ऐसे हुआ कि दो ऊंटों की शादी हुई, और शादी के समय जैसे आपको पता है निमंत्रण पत्र दिए जाते हैं, तो इन दो ऊंटों ने भी अपने विवाह के लिए निमंत्रण पत्र दे दिए सबको, सारे पशु समाज में। तो गर्धबेन जायते, तो थोड़े दो गधों को भी निमंत्रण पत्र पहुंच गया, तो वो भी आए। दो गधे ऊंटों की विवाह में वो भी आए। तो सारे संस्कार वगैरह सब हो गए, रिसेप्शन था, विवाह तो हो गया, रिसेप्शन स्टेज पे खड़े थे, सब लोग आ रहे थे, सब लोग अपने अपने भेंट उपहार सब दे रहे थे। और जैसे रिसेप्शन में होता है, वर वधु दोनों सज धज के आए थे, तरह तरह के अच्छे फूल वूल सब सूट वूट पहन के सब खड़े थे, ते ऊंट भी खड़े थे। तो दो गधे भी आए, दो गधे भी प्रशंसा करने लगे ऊंटों की। वो कहने लगे, अहो रूपम, कितना सुंदर लग रहे हैं आप दोनों। वैसे ऊंट जो है अनेक चीजों के लिए जाना माना होता है। जैसे वो रेगिस्तान में कम पानी में रह सकता है ना, जो कि अन्य पशुओं के लिए संभव नहीं है। और ऐसे अवस्था में भी वो रेती के बालू में चल सकता है, धूप को सहन कर सकता है, और बड़े बड़े जो वजन है वो उठा के ले जा सकता है। तो तेजी से तेज गति से चल भी सकता है। तो ऊंट ऐसे अनेक चीजों के लिए विख्यात है, लेकिन निश्चित ही ऊंट सौंदर्य के लिए तो विख्यात नहीं है। जब हम सुंदर सुंदर पशुओं की या सुंदर लोगों की कल्पना करते हैं, तो उसमें ऊंट का चित्र तो नहीं आता है मन में। फिर भी एक गधा जो है, ये क्या प्रशंसा कर रहे हैं, अहो रूपम, आप कितने सुंदर दिख रहे हैं दोनों। फिर वो ऊंट, वो तो पीछे नहीं रहते हैं, वो भी सोचते हैं, ये गधे आए हैं यहाँ पर हमारे विवाह में, बहुत दूर से आए हैं, अच्छे अच्छे उपहार दिए हैं, तो इनकी भी प्रशंसा हमें करनी चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, अहो ध्वनि ही, वाह वाह वाह, आपकी जो आपका मधुर गला है, इतना मधुर है, आपकी वाणी बहुत मधुर है, और आप जब गीत गाते हैं ना, अरे रे रे रे, क्या कहना, लता मंगेशकर भी पीछे रह जाती है, इतना मीठा, इतना मधुर, इतने आपकी ध्वनि है, आपके गीत वास्तव में सारे दुनिया को आकर्षित कर सकती है, मोहित कर सकती है। अभी गधा अनेक गुणों के लिए विख्यात है, कि वो बहुत परिश्रमी है, बहुत वजन उठा सकता है। गधा इस चीज के लिए भी जाना जाता है कि वो थोड़ा मूर्ख है, अल्पबुद्धि वाला है। तो अनेक चीजों के लिए गधे जाने जाते हैं, लेकिन अवश्य मधुर ध्वनि के लिए तो नहीं। जब हम कहते हैं कि ऐसे लोगों के बारे में या पशुओं के बारे में कल्पना कीजिए जो बहुत सुंदर ध्वनि से गा सकते हैं, बोल सकते हैं, तो भले हम सुंदर गायकों के बारे में सोच सकते हैं, या पशु समाज में भी कोयल के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन कभी गधे के बारे में तो इस संदर्भ में नहीं सोचते हैं। लेकिन ऊंट यहां क्या कह रहे हैं, अहो ध्वनि ही, बहुत सुंदर गा रहे हैं। तो परस्पर आप उनकी संस्तुति चल रही है, गधा ऊंट की प्रशंसा कर रहा है और ऊंट गधे की प्रशंसा कर रहा है। लेकिन तीसरा आदमी जो देख रहा है, वो सोच रहा है, क्या है, दोनों ही वैसे हैं, एक ऊंट का ऊंट है, दूसरा गधे का गधा है। तो ऐसे प्रशंसा संस्तुति की क्या कीमत है, क्या मूल्य है इसका? इसमें न तो कोई सत्य है, न तो कोई मतलब है, सरासर झूठ है। बल्कि जो तीसरा आदमी इस प्रशंसा को, परस्पर जो स्तुति चल रही है उसको सुन रहा है, वो तो हंसेगा, ये क्या चल रहा है। उसी प्रकार से दुनिया में जो लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करते रहते हैं, यहाँ कितना शराब पीता है, हाँ कितना पाप करता है, कितना ये करता है, कितना कमाया है, इतना ही किया है, और दूसरा पहले की प्रशंसा करेगा, एक दूसरे की प्रशंसा, परस्पर भावयंतः, ऐसे परस्पर प्रशंसा करते करते अपना जीवन बिता देंगे। लेकिन जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हैं, वो ऊपरी दृष्टि से देखते हैं, कितने मूर्ख हैं ये लोग, एक ऊंट है, दूसरा गधा है, बस ऐसे ही चलता है इनका, इनका जीवन यही है, और इसी को वो मानते हैं सभी कुछ। और हमारे जितने भी उपन्यास हैं आजकल, अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं, टेलीविजन, सिनेमा, यही चल रहा है। गधे और ऊंट की कहानियां हैं, बस स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। किन चीजों के लिए? कम से कम ऐसे गुणों के लिए प्रशंसा करें जो वास्तव में प्रशंसनीय हैं। ऐसा हो तो ठीक है, परंतु ऐसे चीजों के लिए प्रशंसा करते हैं जिनका कोई वास्तव में कोई मूल्य नहीं है, जो सरासर झूठ हैं, जो असत्य हैं, जो हानिकारक हैं। ऐसे चीजों के लिए प्रशंसा करने से क्या मतलब है? कोई अर्थ नहीं है। हां, प्रशंसा करना या करने की जो वृत्ति है ये हर एक में है। क्यों है? हमारा स्वभाव है किसी की प्रशंसा करना, और प्रशंसा करने की वृत्ति वास्तव में भगवान में केंद्रित होनी चाहिए। आत्मा का स्वरूप है कि वो सदैव भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के गुणगान से जब हम विमुख हो जाते हैं तो लोगों की निंदा करना और लोगों की झूठी प्रशंसा करना ये इसका विकृत प्रतिबिंब है। ये प्रशंसा वास्तव में प्रशंसा नहीं है, वास्तव में इनकी निंदा है। ये हमें समझना चाहिए। कभी कभी जब हम किसी की निंदा करना चाहते हैं तो प्रशंसा करते हैं, करते हैं ना ऐसे? जब कोई व्यक्ति कोई मूर्खता का काम कर देता है तो हम कभी उसे कहते हैं, वाह कितना बुद्धिमान हो तुम, ऐसा कहते हैं ना? प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन वास्तव में निंदा करना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से ये लोग एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन वास्तव में क्या है? निंदा ही कर रहे हैं। तुम ऊंट के समान हो, तुम गधे के समान हो, तुम इसके समान हो, उसके समान, यही चल रहा है। तो हमें ऐसे प्रशंसा और संस्तुति की प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं होना चाहिए। इनके बीच में हमें नहीं पड़ना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये इनकी प्रशंसा कर रहे हैं तो व्यक्ति वास्तव में बहुत महान होगा, तो हमें उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए अन्यों की प्रशंसा के आधार पर। हम अखबारों में पढ़ते हैं, पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, विज्ञापनों में देखते हैं, ये इतना बड़ा आदमी है, तरह तरह के लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो हमें भी लगता है कि चलो हमें भी इनकी प्रशंसा करनी चाहिए, हमें भी इनका संग प्राप्त करना चाहिए। तो इन चीजों से, ऐसे गलत प्रचार से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, इससे केवल हमारी हानि ही होनी है। बस हमें हमारी संस्तुति करने की या प्रशंसा करने की जो प्रवृत्ति है उसको भगवान और भगवान के भक्तों में रखनी चाहिए, बस, और वो भी हृदय से हमें करना चाहिए। आजकल देखा जाता है कि कलयुग में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति बहुत शक्तिशाली होती जाती है, निंदा करने की प्रवृत्ति, बुराई करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ी हुई है लोगों में। हमें अपनी परीक्षा करनी चाहिए। एक परीक्षा गृह पाठ है हम सबके लिए। अभी देखिए, आने वाले एक हफ्ते में आप ये संकल्प कीजिए कि हम किसी की भी बुराई नहीं करेंगे, जबान से किसी के बारे में भी बुरा नहीं बोलेंगे। अभी अपने आप की परीक्षा कीजिए एक हफ्ते में। जब भी आप बुराई करेंगे लिख लीजिए, हाँ ये, फिर एक हफ्ते के बाद देखिए कि एक हफ्ते में कितनी बुराई हमने की है या नहीं की है। तो अब ये करेंगे अपने आप गृह पाठ, ये प्रयास कीजिए इस क्षण से, और फिर देखिए कि एक हफ्ते के बाद क्या परिणाम आता है। लेकिन ईमानदार रहना पड़ेगा आपको अपने आप से। किसी की बुराई नहीं करनी है इस क्षण से, एक हफ्ते तक कम से कम, क्योंकि इस कलयुग में यह वृत्ति बहुत प्रभावशाली, ये बहुत तेज है, बहुत शक्तिशाली है। कुछ बोलते हैं तो बुराई ही निकलती है मुंह से। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ज्यादा बोलने से केवल वैर उत्पन्न होता है, बस इसलिए व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। नंद महाराज प्रभु ने हमको सिखाया एक बार, एक चुप सौ सुख, है ना, वो बोलते हैं मुहावरे हैं ऐसे हिंदी में, एक चुप सौ सुख। जब आदमी चुप नहीं रहता है तो दुख होता है, वो कुछ कह देता है और कहेगा क्या, कुछ बुराई करेगा किसी की, और जब उस व्यक्ति को पता चलता कि इसने मेरी बुराई की है तो क्या होगा, वैर उत्पन्न हो जाएगा, फिर वो कुछ कह देगा उल्टा, फिर और कुछ जवाब में होगा, ऐसे वैर बढ़ते जाता है। और ये दुनिया की, सारी दुनिया की परिस्थिति ऐसी है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर सलाह देते हैं कि यदि हम कृष्ण के बारे में नहीं बोल सकते तो चुप रहना ही अच्छा है, क्योंकि चुप नहीं रहेंगे कृष्ण कथा करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण कथा नहीं करेंगे तो चुप रहना है, चुप भी नहीं रह सकते तो अवश्य बुराई ही करेंगे किसी की, कोई ना कोई प्रजब चलेगा या झूठी प्रशंसा चलेगी किसी की। कलो दोष निधे राजन, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि ये कलयुग दोषों का सागर है, सब जगह जहां भी हम देखेंगे वहां दोष ही दोष दिखाई पड़ेंगे। इसलिए दोषों के सागर में रहते हुए हमें प्रभावित नहीं होना, हमें अच्छे गुण देखने चाहिए। भक्तों के समाज में भी आते हैं, भक्तों में भी दोष दिखाई पड़ते हैं, और कभी कभी सेवा के लिए इनका सामना करना भी आवश्यक पड़ता है, क्या किया जाए। लेकिन देखने की वृत्ति ये नहीं होनी चाहिए कि हम राह देख रहे हैं कब कोई व्यक्ति गलती करे और हम कहें देखो ये गलती है। यदि सेवा के लिए गलती का सुधार किसी का कराना भी पड़े तो वो उस भावना से करना चाहिए, अनुकूल भावना से करना चाहिए, उस व्यक्ति के हित के लिए करना चाहिए, या भगवान की भक्ति के विकास के लिए, वृद्धि के लिए करना चाहिए। दूसरों की गलती देखने में आनंद नहीं लेना चाहिए, कभी कभी सुधार करना या कोई कदम उठाना आवश्यक पड़ता है भगवान की सेवा के लिए, इस भावना से किया जाए तो ठीक है, परंतु इसमें हमें आनंद लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। संसार में लोगों की वृत्ति रहती है कि किसी की बुराई सुनते हैं तो उनको अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक मनोरंजन का विषय बन जाता है, परंतु हमें दूसरे की बुराई में कभी आनंद नहीं लेना चाहिए, भले वो सच भी क्यों ना हो। ऐसे हमें भक्तों की और भगवान की गुणगान करते रहने में अपना सारा समय, ऐसे जीवन ऐसे बिताना चाहिए। और जो लोग, जिनके कानों में, कान के पथ में भगवान के नाम और कथा प्रवेश नहीं कर रहे हैं, तो उनको जाके कृष्ण कथा पहुंचाना चाहिए, इसमें हमारा समय जाना चाहिए। ऐसे सारे समाज को हम धीरे 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 से बदल सकते हैं, यही चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है। तो हमें न तो बिना वजह अन्यों की जाके स्तुति करनी चाहिए, शास्त्रों में वर्णित है कि बिना वजह जाके किसी भौतिकवादी व्यक्ति की प्रशंसा करना, हाँ थोड़ा बहुत कुछ उनको प्रोत्साहित करने के लिए भक्ति मार्ग में हम कह दें ताकि उनकी भावना कुछ अनुकूल हो जाए भक्ति के प्रति, वो ठीक है, लेकिन यूं ही जाके प्रशंसा करना तो वो यही बात हो जाएगी जो इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। निंदा भी नहीं करनी चाहिए, प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए, केवल उस व्यक्ति को भक्ति में लाने के लिए जितना आवश्यक है उतना हमें करना चाहिए, जो उचित है वो करना चाहिए। और अन्यों की स्तुति से, जो संसारी लोगों की स्तुति करते हैं, उनसे हमें भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हमारे मन में विचार आता है कि हमें भी एक दिन ऐसे होना चाहिए ताकि लोग हमारी प्रशंसा करें। कल शाम को हम प्रवचन में वर्णन कर रहे थे कि पिछले दो तीन महीनों में दो तीन बार जब हम हवाई जहाज में जा रहे थे तो कोई ना कोई ऐसे सिनेमा के अभिनेता अभिनेत्री हुए हैं, अनुमान लगाते हैं कि वो अभिनेता अभिनेत्री हुए होंगे, जिस तरह से उनका उनकी वेशभूषा और उनका हाव भाव था और जिस प्रकार से लोग उनके साथ फोटो लेना चाहते थे और उनके ऑटोग्राफ लेना दस्तखत लेना चाहते थे, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे ही हैं कोई होंगे। तो जिस प्रकार से लोग उनके साथ में पिक्चर खींचना चाहते, तस्वीर खींचना चाहते थे, उनके दस्तखत चाहते थे, आपस में विषय बन गया, देखो देखो वो आए हैं वो आए हैं, तो उनके मन में क्या विचार है कि काश मैं भी वैसे हुआ होता। मैं नहीं हूं, मैं उतना सुंदर नहीं हूं, वो दूसरी बात है, लेकिन काश मैं भी उनकी तरह सुंदर हुआ होता, फिर मेरी भी प्रशंसा ऐसे लोग करते, मेरे साथ में फोटो खिंचवाने के लोग चले आते। तो लोग उस प्रशंसा से बहुत प्रभावित होते हैं और उनकी तरह फिर बनना चाहते हैं। और ऐसे वातावरण में भगवान की भक्ति के लिए कहां स्थान है, कहां जगह है। ऐसे एक दूसरे की प्रशंसा के पीछे भागे दौड़े जाते हैं, इसके साथ तस्वीर खींचो, इसके ये लो लो, तो जीवन का ध्येय कहीं रह जाता है। बिल्कुल कोई रुचि नहीं, कोई मन उतना तैयारी नहीं होता है कि वो भगवान की भक्ति के बारे में कुछ सोचे, कुछ समझे, और कोई बताने भी जाए उनको तो बिल्कुल प्रवेश ही नहीं करता है उनके मन में। क्यों है अदांत गोभीर विषताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानं, क्योंकि विषय भोग से इतने आसक्त हैं, आकर्षित हैं कि भगवान के विषय मन के अंदर प्रवेश करते ही नहीं है। इसलिए हमारे लिए जीवन में सबसे मूल्यवान चीज है ये भक्तों का संग, इसको पकड़ के रखना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और ऐसे भक्तों के संग में बहुत गंभीरता पूर्वक हमें भगवान की भक्ति के मार्ग में आगे चलते रहना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। प्रसाद का समय हो गया या अभी? तो किसी को कोई प्रश्न है? वैसे इस विषय को और भी आगे खींचा जा सकता है, बोला बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन अब प्रश्नों के लिए थोड़ा समय छोड़ना चाहिए। ठीक है, आश्चर्य की बात है आप सब जगे हुए हैं, आपकी प्रशंसा करनी चाहिए, यह प्रशंसा उचित है। हाँ जी हाँ जी, किसी की भी बुराई मुश्किल है ना। एक हफ्ते के लिए करके देखें। और ऐसे जैसे देखिए, आप गाड़ी के टायर में हवा भरते जाएंगे तो टायर क्या होगा, फूलता जाएगा ना। उसी प्रकार से हम संसार में क्या देखा, लोगों की प्रशंसा होती है होती है होती है, हवा भराया जा रहा है, क्या होता है, सर फूलते जाता है, और फिर व्यक्ति सोचता है कि मैं वास्तव में वही हूं जो कि ये लोग कह रहे हैं। हम विश्वास करने लगते हैं कि ये लोग जो प्रशंसा कर रहे हैं वो सही है। इसलिए हमारी भी प्रशंसा यदि कोई करे तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। कभी भूल से भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वास्तव में ये मेरी प्रशंसा है, कि ये सत्य है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए हमें। हाँ, कभी कभी अन्यों को प्रोत्साहन देने के लिए हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमारी भावना सही है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ,